क्या आप उसकी कोई जानकारी दे सकते हैं? क्या आपको कुछ याद है? अब आगे। अविनाश ने जैसे ही ये कहा, चौकीदार काका कुछ हैरान हो गए, क्योंकि सुमित ने तो वो वीडियो वगैरह लॉकेट के बारे में सबको बातचीत करने से मना कर दिया था। लेकिन उसे चौकीदार काका को वो इंस्ट्रक्शन देना भूल गया था, क्योंकि वो चौकीदार काका उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, क्योंकि सुमित उनसे केवल 2 घंटे की ही ड्यूटी लिया करता था तब। और लकीली जिस दिन आस्था वहां आई थी, उसने आस्था के गले में वो लॉकेट देख लिया था और हाँ में भरते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, ये तो मुझे अच्छे से याद है। एक बड़ी ही प्यारी सुंदर सी बिटिया थी जो इस लॉकेट को पहनकर आई थी। अविनाश को जैसे ही चौकीदार काका ने ये बताया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और वो जल्दी से बोला, काका क्या प्लीज मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की कहाँ है? क्या नाम था उसका? कैसे दिखती थी? मेरे लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, प्लीज प्लीज काका। तब चौकीदार काका कुछ सोचते हुए बोले, अरे बेटा, वो बिटिया तो आज भी इसी होटल में आई हुई है। हमने खुद देखा था उन्हें, अपनी सहेली के साथ इसी होटल में आ जाई है। वो बच्ची का नाम हमें नहीं पता है बेटा, और फिर हमारी याददाश्त भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। और ये बिटिया हमें इसलिए याद है क्योंकि जब ये बिटिया इस होटल में आई थी तो उसने हमसे झुककर आशीर्वाद लिया था। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने नेक दिल होते हैं। चौकीदार काका ने जैसे ही ये बोला, अविनाश की आंखों से झमाझम आंसुओं की बरसात होने लगी थी। उसे तो ऐसा लगने लगा कि उसे जीने का सहारा मिल गया हो। जल्दी ही वो दौड़कर वापस होटल के अंदर गया और खुशी से पहले एक जगह खड़ा होकर चारों तरफ होटल को देखने लगा था। और फिर जल्दी जाकर वो अब हर एक लड़की को देखने लगा था, हर लड़की का गला देख रहा था। कहीं न कहीं उसे तो लग रहा था कि जरूर उसकी बहन गोरी ने आज भी अपने गले में वो लॉकेट पहना होगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान सिंघानिया जल्दी ही वापस अपने घर लौट आया था और वहां जाकर अच्छे से वो नहाया धोया, थोड़ा फ्रेश हुआ, क्योंकि देव ने उसे मैसेज कर दिया था कि उसने अभिमान को सीधा लाकर अस्पताल में एडमिट करवाया है क्योंकि उनकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। अमरीश ने उन्हें कुछ ऐसे डोसेस दिए थे, ऐसे ऐसे इंजेक्शन वगैरह दिए थे जिसकी वजह से उन्हें ड्रग्स का आदि बना दिया गया है और हर तरह के उन्हें ड्रग्स दिए गए थे और अब तो उनका शरीर ऐसा हो गया है कि ड्रग्स मांगता है। अरमान ने जैसे ही ये सुना, एक पल के लिए अरमान का दिल दहल गया था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए अरमान ने देव को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो सबसे पहले उसके पिता को एक बड़े से बड़े अस्पताल में एडमिट करवाएं और उनका ठीक से इलाज करवाएं, क्योंकि इस तरह से ड्रग्स लेने वाले पिता को वो अपने दादाजी से नहीं मिलवा सकता था और वैसे भी अरमान दादाजी को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा देना चाहता था, उनका बेटा उन्हें देना चाहता था, वो भी सही सलामत। अरमान का दिल कर रहा था कि वो अपने दादाजी के पास जाए, उसे गले से लगाते हुए अपने दिल की बात बताएं और दादाजी का ढेर सारा शुक्रिया अदा करें कि वो आस्था जैसी लड़की को उसकी जिंदगी में लेकर आए और जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। लेकिन अरमान अभी दादाजी को कुछ नहीं कहना चाहता था जब तक कि वो उनके बेटी को उनके करीब नहीं ले आता। वेल, अब जल्दी ही अरमान फटाफट से तैयार हुआ और अपनी पूरी टीम को उसने बता दिया था कि वो सब के सब इस वक्त होटल में पहुंच जाएं, क्योंकि आस्था, रश्मि, रौनक और राधिका इस वक्त होटल में मौजूद हैं। तब आहान को तो इस बारे में नहीं पता था और न ही सुमित को इस बारे में पता था कि राधिका और रौनक भी अब आस्था के साथ हैं। उन सबको तो यही पता था कि आस्था और रश्मि इस वक्त एक साथ हैं, जिस तरह से पहले आए थे, इसलिए वो सब भी उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उन लोगों को तो लग रहा था कि बड़े दिन से उन्होंने बाहर फैमिली डिनर वगैरह भी नहीं किया है, तो अब एक साथ बैठकर वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते थे। तो बस यही सोचते हुए फटाफट से वो लोग अब होटल की ओर सज धज कर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ डिंपल ने गुस्से से जाकर अपने कमरे में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया था। आस्था का चांटा मारना, साथ ही साथ रौनक का धक्का देना, उसको बार बार वो सीन याद आ रहा था। उसका दिमाग एकदम बेइज्जती की आग में उबल रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसने कसम खाई थी कि वो अब रौनक और आस्था दोनों को ही सबक सिखा कर रहेगी और रौनक को तो वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी और हर हाल में वो उसके बारे में जानकारी रखेगी। इसीलिए डिंपल ने अपने सोर्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी ही इस बात के बारे में पता लगवा लिया कि रौनक और आस्था क्या करती हैं, कहाँ पढ़ती हैं और इस वक्त वो दोनों क्या कर रही हैं। और जल्दी ही रौनक और आस्था की डिटेल्स उसके हाथों में थी, क्योंकि डिंपल के पास पैसा बहुत था और अपने पैसे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने रौनक की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी निकलवा ली थी और ये भी पता लगा लिया कि रौनक एक अनाथ लड़की है,
तो उसे अब और गुस्सा आ रहा था कि एक अनाथ लड़की भला किस तरह से उस पर हाथ उठा सकती है। इस वक्त उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और जल्दी ही उसने अपने गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे रौनक और आस्था की बर्बादी हो सकती थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ आस्था वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकली तो वो सीधा सीधा अविनाश से टकरा गई थी। अविनाश तो पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा था जो लड़की इस वक्त होटल में मौजूद थी, और वो लड़की उसकी सगी बहन थी। अब आस्था से टकराते ही आस्था और अविनाश दोनों को ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। दोनों ने एक पल एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें ऐसा लगा था मानो कि वो कोई अजनबी नहीं हो। लेकिन अविनाश की नजर तो सीधा आस्था के गले पर पड़ी, लेकिन उस वक्त आस्था का गला खाली था क्योंकि आस्था ने कसम खाई थी जब तक वो अपने पास्ट के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती तब तक वो बिल्कुल भी वो लॉकेट नहीं पहनेगी। तो इसीलिए बस उसने आज वो लॉकेट नहीं पहना था, वरना जब भी वो कहीं बाहर जाती थी या खुश होती थी वो लॉकेट को जरूर पहना करती थी। वेल, और थोड़ा सा आस्था को डर भी लग रहा था कि लॉकेट इतना महंगा है तो उसे पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। हालांकि उसे पहले नहीं पता था कि ये पेंडेंट इतना महंगा है, क्योंकि पहले तो वो उसे एक नॉर्मल 400-500 का पेंडेंट समझकर पहन लिया करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी कीमत 400-500 करोड़ है, तो इसीलिए वो अब थोड़ा सा केयरफुल भी हो गई थी। वहीं अविनाश से टकराने पर आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। अविनाश ने भी तुरंत यही बोला, जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं देखा। तभी रश्मि वहां गई थी और आस्था के पास एक लड़के को देखकर तुरंत आस्था के साथ जाकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि जब से आस्था के साथ हादसा हुआ था तो कोई भी आस्था को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। तब रश्मि ने उस लड़के की ओर यानी अविनाश की ओर देखकर कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम आस्था के साथ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम ठीक हो ना आस्था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तब आस्था ने तुरंत रश्मि को शांत करते हुए कहा, रश्मि दीदी, हम बिल्कुल ठीक हैं, प्लीज परेशान मत होइए, वो हमसे बस गलती से टकरा गए। वहीं अविनाश रश्मि के गले को भी देख रहा था, लेकिन उसके गले में मंगलसूत्र था। फिर उसके बाद अविनाश ने अपनी नजरें वहां से हटा ली थी, लेकिन रश्मि ये देख चुकी थी कि अविनाश ने उसके गले की तरफ देखा है, तो उसे लगा कि अविनाश की नजरें कुछ ठीक नहीं है। अविनाश उसके गले की जगह उसके उभरे हुए अंगों की तरफ देख रहा है, इसलिए उसे अविनाश को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। रश्मि अपनी साड़ी का पल्लू अच्छे से ठीक करते हुए बोली, देखो मिस्टर, अब जो कोई भी है आप जाइए यहाँ से।
रश्मि ने जैसे ही ये बोला अविनाश थोड़ा सा सकपका गया था, और कहीं ना कहीं उसे लगा कि रश्मि उसे गलत समझ रही है, और उसे समझाते हुए बोला, नहीं मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं जस्ट ये देख रहा था। जैसे ही उसने अपने मुंह से बोल दिया मैं ये देख रहा था, तब तो रश्मि का शक यकीन में बदल गया और वो फटकारते हुए बोली, देखो अगर तुमने अपनी गंदी नज़रें हम पर से हटाना बंद नहीं की तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगी और तुम्हें यहां से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी या सीधा पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। रश्मि की धमकी सुनकर तुरंत अविनाश बोला, देखिए आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, प्लीज़। तब आस्था ने भी रश्मि से कहा, दीदी आपको ज़रूर कुछ गलतफहमी हुई है, ये ऐसे नहीं है। आस्था को उस अनजान लड़के की साइड लेता देखकर रश्मि चौंक कर बोली, आस्था तुम्हें लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं, तुम बहुत भोली हो, तुम चलो मेरे साथ। ऐसा बोलकर अविनाश को घूरती हुई रश्मि आस्था को लेकर वहां से जाने लगी थी। तब अविनाश थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया था और एक बार फिर वो पूरे होटल में घूमने लगा था और हर एक लड़की के गले को देख रहा था। और अब जल्दी ही अविनाश की नज़रें वीआईपी एरिया पर पड़ी और वो वहां भी जाकर तलाश करने लगा था। वीआईपी एरिया में इस वक्त राधिका और रौनक मौजूद थी। तब अविनाश बिना देरी किए फटाफट से वीआईपी एरिया में थे घुस गया था। ठीक उसी वक्त आस्था और रश्मि भी उसके पीछे पीछे वहां जाने लगी थीं। वहां जाकर अविनाश ने रौनक और साथ ही साथ राधिका के गलों को भी देखना शुरू कर दिया था। वहीं रश्मि ने जैसे ही अब अविनाश को ये सब करते हुए देखा तो उसका पारा चढ़ चुका था और उसने तुरंत अविनाश को धक्का देते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, हाँ क्या देख रहे हो तुम, हर एक लड़की को क्यों देखना चाहते हो तुम, क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, कोई इस तरह से घटिया नजरों से किसी लड़की को कैसे देख सकता है, क्या तुम्हें अकल नहीं है, हाँ कहाँ से आए हो तुम, दिखने में तो किसी शरीफ घर के लगते हो। अविनाश दिखने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड हीरो के जैसा लगता था, एकदम फॉरेनर, बड़ा ही हॉट, हैंडसम और डैशिंग, और वैसे भी वो तो विदेश से आया था, 5 साल की उम्र में ही वो विदेश चला गया था और अब लौटकर वहां से आया था, तो इसीलिए वो अब बहुत ही ज्यादा डैशिंग हो गया था। लेकिन अब रश्मि तो कुछ गलत ही समझ रही थी। अब रश्मि की बातें सुनकर रौनक भी अपने लड़के वाले स्टाइल में आगे आती है और अविनाश की ओर देखकर बोली, हेलो मिस्टर, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी, यहाँ क्या देख रहे हो तुम, बोलो जवाब दो। वही आस्था को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, वो तपाक से बोली, अरे रश्मि दीदी छोड़ दीजिए ना,
आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो सकता है कुछ उन्हें जरूरी काम हो। मुझे लगता है कि ये कुछ गलती नहीं कर सकते हैं। आस्था ने अनजाने में अपने भाई को डिफेंड किया। तीनों लड़कियां आस्था को घूर कर देखने लगी थीं, मानो कि वो उसे कहना चाह रही हों कि तुमने लास्ट टाइम रौनक जब लड़का बनी हुई थी उसे डिफेंड किया था और तुम्हारे पति ने रौनक के सर पर बंदूक तान दी थी, और आज तुम तो यहां से सीधे किसी लड़के को डिफेंड कर रही हो। हाँ, लेकिन रश्मि तुरंत बोली, अरे आस्था तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं जानती हो, ऐसे लड़के अपने हैंडसम और डैशिंग और पर्सनैलिटी का थोड़ा सा चक्कर चलाते हैं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं। अरे मैंने बहुत सारे घोटाले देखे हैं और ये लड़का तो मुझे शुरू से ही ठीक नहीं लग रहा है। जब देखो हर एक लड़की के गले की तरफ देख रहा है, आखिरकार देखना क्या चाहता है ये? ऐसा बोलकर रश्मि अब उस लड़के को यानी अविनाश को घूरने लगी थी। वहीं अविनाश का आस्था का उसे डिफेंड करना अच्छा लगा था और वो आस्था को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच, आपने मुझे समझा, लेकिन देखिए आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप सोच रहे हैं। तभी रौनक थोड़ा सा आगे आती है और अविनाश को धक्का देते हुए एक एक कदम आगे बढ़ने लगी थी और उसे धक्का देते हुए ही बड़बड़ाती है, अच्छा कौन हो तुम? ऐसा बोलते हुए फिर धक्का दिया, फिर थोड़ा दो चार कदम आगे बढ़ी और फिर बोली, कहना क्या चाहते हो, क्यों देख रहे हो लड़कियों को, लड़कियों के गले की तरफ क्यों घूर रहे हो? ऐसा बोलते हुए रौनक ने एक बार फिर अविनाश को धक्का दिया। अविनाश दो तीन कदम फिर पीछे हो गया। तब रौनक उसके और करीब जाते हुए एक बार फिर उसे धक्का देने लगी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक रौनक खुद का बैलेंस नहीं बना पाती है और अविनाश ने संभालते हुए उसकी कमर पर से उसे पकड़ लिया था और इस तरह से रौनक पूरी तरह से अविनाश के बाहों में समा गई थी। अब ये नज़ारा आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान ने देख लिया था। मारिया और टाइगर वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोनों ही अलग अलग जाकर अपना खाना वाना ऑर्डर करने लगे थे। आहान ने जैसे ही ये देखा और स्पेशली अविनाश के हाथों को देखा जो कि रौनक के कमर पर थे, तो उसे तो ऐसा लगा मानो कि उसकी सांसें किसी ने छीन ली हों। वहीं अब आस्था, रश्मि, राधिका की नज़र जैसे ही उन सब पर पड़ी तो वे हैरान हो गए थे। वहीं राधिका सुमित को वहां देखकर थोड़ा सा चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि सुमित तो हमेशा इन सब के साथ ही रहता है तो इसीलिए साथ में आया होगा, तो इसीलिए वो अब बिना किसी इमोशंस के खड़ी होकर उन्हें देखती रही। वहीं आस्था ने